कल्पना कीजिए कि सर्दियों का समय है और एक गाड़ी हाईवे पर बहुत ही तेज गति से दौड़ रही है।
हाँ, बिल्कुल आम बात है सर्दियों में।
और अचानक सड़क पर बर्फ का एक बहुत ही चिकना टुकड़ा आ जाता है। टायर की जो पकड़ होती है वो पूरी तरह से छोड़ जाती है और गाड़ी अचानक बेकाबू होकर फिसलने लगती है।
वो बहुत ही डरावना पल होता है।
बहुत डरावना। और ऐसे पल में मतलब एक इंसान की सबसे पहली सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है?
वो घबरा जाता है।
और उसी घबराहट में वो तुरंत ब्रेक पेडल पर अपनी पूरी ताकत से पैर मार देता है।
बिल्कुल, मतलब हमारी वृत्ति यही कहती है कि किसी तरह बस गाड़ी को रोक दो।
वही तो, इंसान सोचता है कि किसी भी तरह से बस गति को रोक कर वो तुरंत अपना नियंत्रण वापस पा लेगा।
लेकिन देखिए, कोई भी अगर अनुभवी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होगा ना, तो आपको यही बताएगा कि बर्फ पर फिसलते समय ब्रेक मारना ये सबसे घातक कदम हो सकता है।
सच में, मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है।
हाँ, क्योंकि ऐसा करने से पहिए पूरी तरह लॉक हो जाते हैं और फिर गाड़ी पूरी तरह से स्पिन कर जाती है। मतलब स्थिति सुधरने की बजाय बद से बदतर हो जाती है। विज्ञान ये कहता है कि बचाव का असली तरीका यह है कि अपना पैर ब्रेक से हटा लें, स्टीयरिंग को उसी दिशा में मोड़ें जिस तरफ गाड़ी फिसल रही है, और थोड़ा इंतजार करें।
ये बहुत मुश्किल है। मतलब ये तरीका उस समय हमारी हर एक प्राकृतिक वृत्ति, हमारे हर एक डर के बिल्कुल खिलाफ होता है ना?
बिल्कुल, और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु भी है।
हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस ऐतिहासिक सामग्री पर गौर कर रहे हैं वो डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट द्वारा यशाया यानी आइजाया के अध्याय 30 और 31 पर दिया गया एक बहुत ही विस्तृत व्याख्यान है, और ये दिखाता है कि कैसे 700 ईसा पूर्व में भी इंसानी दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता था।
और इस पूरे व्याख्यान का जो एक मुख्य विषय है वो ये है कि उन लोगों के लिए शोक जो इंतजार नहीं करेंगे।
हाँ, और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इंतजार करने का मतलब कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना या निष्क्रिय होना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इस संदर्भ में इंतजार करने का सीधा सा अर्थ है भरोसा करना। जब संकट आता है तो घबराहट में गलत फैसले लेने की जो ये हमारी मानवीय वृत्ति है, ये कोई नई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है।
बिल्कुल, और ये स्रोत सामग्री अपने आप में बहुत ही असाधारण है। मतलब हम 700 ईसा पूर्व के यरूशलम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज के आधुनिक जीवन से हमारी इस नियंत्रण पाने की जो होड़ है उससे हैरान करने वाली हद तक जुड़ी हुई है।
देखिए, उस दौर के राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। असीरिया, जो उस समय की सबसे खूंखार और ताकतवर महाशक्ति थी,
मतलब वो सिर्फ एक सेना नहीं थी।
बिल्कुल, वो महज एक सेना नहीं थी, वो एक मशीन थी। एक ऐसी मशीन जो एक एक करके हर देश को रौनती हुई बस आगे बढ़ रही थी, और उनका अगला निशाना यरूशलम था।
चारों तरफ मौत, तबाही और एक भयानक खौफ का माहौल था।
और इस खौफनाक माहौल के बीच यरूशलेम के नेता, जिन्हें संकट का कोई समाधान खोजना था, पता है वे क्या कर रहे थे?
मुझे लगता है कि वो शायद तहखानों में बैठकें कर रहे थे।
वही, वे तहखानों में गुप्त बैठकें कर रहे थे। वे एक कूटनीतिक योजना बना रहे थे, मिस्र के साथ एक सैन्य गठबंधन करने की योजना।
लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वे इस योजना को दुश्मनों से नहीं छुपा रहे थे, वे इसे परमेश्वर से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वे बिना परमेश्वर की सहमति के ही अपनी राजनीतिक चालें चल रहे थे।
हाँ, ये दर्शाता है कि जब डर हावी होता है तो नेतृत्व कैसे काम करता है। यरूशलेम के ये नेता खुद को बहुत रणनीतिक और चालाक मान रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे परमेश्वर को अपनी राजनीतिक योजनाओं के लिए बस एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब वो पूरी स्थिति को उल्टा ही देख रहे थे।
बिल्कुल, वे ये भूल गए थे कि परमेश्वर कुम्हार है और वे केवल मिट्टी हैं। वे मिट्टी होकर कुम्हार को बताना चाह रहे थे कि देखिए, चीजें ऐसे काम करेंगी।
अरे वाह।
वे परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मांग रहे थे, बल्कि वे चाहते थे कि परमेश्वर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर बस अपनी मोहर लगा दे।
ये सुनकर मुझे ना वो उत्पत्ति की कथा यानी जेनेसिस की वो कहानी याद आती है, जहां इंसान ने पेड़ के पीछे छिपकर सोचा था कि ब्रह्मांड का रचयिता उसे नहीं देख पाएगा।
हाँ हाँ, बहुत सटीक तुलना है।
मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है या तकिए के नीचे अपना सिर छिपा लेता है और सोचता है कि अब उसे कोई नहीं देख सकता। ये विचार ही कितना बेतुका है, है ना, कि कोई इंसान उस सत्ता से कुछ छिपा सकता है जो सब कुछ जानती है।
बिल्कुल, और ये हमारी उस झूठी सुरक्षा की भावना की ओर इशारा करता है, जहां हम मान लेते हैं कि हमारे पास सारे जवाब हैं।
डॉक्टर ओसवर्ल्ड बताते हैं कि जब ये नेता अपनी योजनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, तो वे असल में आध्यात्मिक रूप से अंधे और बहरे हो चुके थे।
लेकिन इन अंधी और बहरी हो चुकी राजनीतिक योजनाओं के बीच स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली वादा भी दिया गया है। परमेश्वर कहता है कि इन नेताओं के बावजूद एक दिन ऐसा आएगा जब बहरे सुनेंगे और अंधे देखेंगे।
ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि ये घबराहट और डर का जो पर्दा है वो हमेशा नहीं रहेगा और लोग सत्य को उसकी असलियत में पहचान पाएंगे।
हाँ, लेकिन उस वक्त उस तहखाने में वे पूरी तरह से घबराए हुए थे,
और क्योंकि उन्होंने अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करते हुए मिस्र के साथ गठबंधन करने का फैसला कर ही लिया था, तो अब ये देखना सच में दिलचस्प है कि ये फैसला उन्हें किस खतरनाक रसातल में धकेलता है।
बिल्कुल, देखिए, असीरिया की सेना ने जो आसान और सीधा तटीय रास्ता था ना, उस पे कब्जा कर रखा था।
तो अब यरूशलेम के लोगों को मिस्र तक अपना खजाना और रिश्वत पहुंचाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक विकल्प चुनना पड़ा, है ना?
हाँ, उन्होंने नेगेव के भयानक जंगल का रास्ता चुना। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, वे गधों और ऊंटों पर सोना चांदी लादकर एक ऐसे रेगिस्तान से गुजर रहे हैं जो अपनी भयानकता के लिए कुख्यात था।
मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर थे।
बिल्कुल, एक ऐसा इलाका जहाँ शेर घूमते थे, जहाँ जहरीले और उड़ने वाले सांपों का खतरा था। ये सिर्फ एक भौगोलिक चुनौती नहीं थी, ये एक रसद और लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा दुस्वप्न था।
मतलब वे अपना सारा धन, अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसे रास्ते पर खर्च कर रहे थे जो हर कदम पर उनकी जान ले सकता था।
हाँ, और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वे मिस्र जैसे एक कमजोर सहयोगी को रिश्वत दे सकें।
अगर हम इस पूरी कवायद को एक व्यापक संदर्भ में रखकर देखें, तो मुझे लगता है कि ये आज के समय के लिए भी एक बहुत ही बड़ा रूपक बन जाता है।
बिल्कुल बन जाता।
मतलब दुनियावी चीजों पर अपनी अंतिम सुरक्षा के लिए भरोसा करना अक्सर हमें ऐसे ही नेगेव के जंगलों में ले जाता है। आज हम गधों पर खजाना लादकर जंगल में नहीं जाते, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बैंकों, अपने सामाजिक पद या भारी भरकम बीमा पॉलिसियों पर अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं।
हाँ, हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में झोंक देते हैं जो अंत में हमें असली सुरक्षा नहीं दे पाती।
अच्छा, अगर मैं यहाँ थोड़ा उनके पक्ष से बात करूँ, मतलब उन घबराए हुए नेताओं के पक्ष से।
हाँ, बताइए।
बाहर से बैठकर इतिहास को पढ़ना और ये कहना बहुत आसान है कि वाओ, उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी की, लेकिन प्राचीन यूनानी नाटककार यूरिपाइड्स का एक मशहूर कथन है कि अपनी मातृभूमि खोने से बड़ा कोई दुख इस धरती पर नहीं है।
ये सच है।
यरूशलेम के लोग जब अपनी दीवारों से बाहर देख रहे थे, तो वहां 185,000 क्रूर असीरियन सैनिक खड़े थे जो लोगों की खाल उधेड़ने और शहरों को राख में मिलाने के लिए जाने जाते थे। तो मानव दृष्टि से देखने पर मिस्र ही शायद एकमात्र तिनका था जिसका वे सहारा ले सकते थे।
आपका पॉइंट सही है।
मतलब जब कोई डूब रहा होता है, तो क्या वो ये विश्लेषण करता है कि तिनका कितना कमजोर है, या वो बस किसी भी तरह अपनी जान बचाने के लिए उस तिनके को मुट्ठी में जकड़ लेता है? क्या संकट के समय में हर संभव उपाय करना एक स्वाभाविक इंसानी प्रतिक्रिया नहीं है?
ये एक बेहद प्रासंगिक और गहरा सवाल है। और देखिए, स्रोत सामग्री इस मानवीय दुविधा, इस वास्तविक डर को बिल्कुल खारिज नहीं करती। असीरिया का खतरा कोई कल्पना नहीं था, वो एक खौफनाक वास्तविकता थी।
हाँ,
लेकिन समस्या उस डर के होने में नहीं थी, बल्कि उस डर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में थी। जब डर हमारी निर्णय लेने की क्षमता पर पूरी तरह हावी हो जाता है और हम सच्चाई का सामना करने से इनकार कर देते हैं, तो हमारी मानसिकता विद्रोही हो जाती है।
विद्रोही?
हाँ, परमेश्वर इन नेताओं को विद्रोही बच्चे कहकर संबोधित करता है। और विद्रोह इसलिए नहीं कि वे डर गए थे, बल्कि इसलिए कि वे सीखना नहीं चाहते थे।
विद्रोही बच्चे, ये शब्द सच में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि वे किसी भी तरह का मार्गदर्शन स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं थे, है ना?
बिल्कुल। वे इतने डरे हुए और अपनी योजनाओं में इतने अंधे हो चुके थे कि वे अपने उपदेशकों और पैगंबरों से स्पष्ट रूप से कहने लगे, हमें हमारी गलतियों के बारे में मत बताओ।
मतलब उन्हें सच नहीं सुनना था।
हाँ, वे कहने लगे, हमें मीठी और भ्रमित करने वाली बातें सुनाओ। वे इसराइल के पवित्र परमेश्वर के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते थे। वे बस ये झूठा आश्वासन सुनना चाहते थे कि उनकी मिस्र वाली योजना काम करेगी।
और ये झूठ सुनने की चाहत उन्हें कहाँ ले जाती है? डॉक्टर ओसवाल्ड इस परिणाम को समझाने के लिए दो बहुत ही शानदार रूपकों का उपयोग करते हैं जो मुझे बहुत पसंद आए।
दीवार और बर्तन वाला है ना?
हाँ, पहला है एक ऊंची बाहर की तरफ लटकती हुई दीवार का रूपक और दूसरा है कुम्हार के एक बर्तन का रूपक। हम जानते हैं कि जब कोई दीवार ढहती है तो वो बस अचानक नहीं गिर जाती। उसके अंदर जो संरचनात्मक दबाव होता है वो काफी समय से बन रहा होता है।
बिल्कुल।
तो गलत चीजों पर, जैसे कि उस समय मिस्र पर, भरोसा करना एक ऐसी ही दीवार की तरह है। वो अंदर से कमजोर हो चुकी है और देखने में ऐसा लगता है कि वो कभी भी अचानक ढह सकती है।
और वो दीवार जब गिरती है तो कोई चेतावनी नहीं देती। इसी तरह वो दूसरा रूपक जो कुम्हार के बर्तन का है, वो और भी भयानक तस्वीर पेश करता है।
वो कैसे?
देखिए, जब एक मिट्टी का बर्तन टूटता है तो वो महज दो टुकड़ों में नहीं बंटता, वो एक ही झटके में हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि वो इतनी बुरी तरह टूटता है कि उसका एक भी टुकड़ा आग से राख उठाने या गड्ढे से थोड़ा सा पानी पीने के भी काम नहीं आता।
मतलब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।
हाँ, झूठी सुरक्षा का यही सच है। जब वो टूटती है तो आपको पूरी तरह से असहाय और खाली छोड़ देती है।
इस विद्रोही रवैये को समझने के लिए मुझे लगता है श्रोत में एक और महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र है, तोरा। अक्सर जब ये प्राचीन इब्रानी शब्द सामने आता है तो इसे एक बहुत ही सख्त कानून या एक ऐसी पाबंदी के रूप में देखा जाता है जो हमारी आजादी छीन लेती है।
ज्यादातर लोग यही मानते हैं,
लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड साफ करते हैं कि तोरा का असली अर्थ कानून नहीं है बल्कि निर्देश या इंस्ट्रक्शन है।
बिल्कुल।
ये एक मैनुअल है जो बताता है कि जीवन और ये ब्रह्मांड असल में कैसे काम करते हैं।
जी,
मतलब हम बीजगणित या अलजेब्रा के नियमों को स्कूल में बड़ी मेहनत से सीखते हैं।
जी,
हम ये मान लेते हैं कि गणित के नियम अटल हैं और हम उनसे लड़ते नहीं हैं।
हाँ।
कोई 2+2 को 5 नहीं कहता।
वही तो।
लेकिन जब जीवन के आध्यात्मिक या नैतिक नियमों की बात आती है तो क्या हम अक्सर विद्रोही बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते?
हाँ।
हम निर्देशों को एक बंधन मान लेते हैं और सोचते हैं कि हम अपने नियम खुद बना सकते हैं।
वो ये बीजगणित वाली तुलना बहुत सटीक है। जब हम जीवन के गुरुत्वाकर्षण या नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो हम उसी कमजोर दीवार की तरह ढहने के कगार पर पहुंच जाते हैं। और इसी विद्रोही रवैये और झूठी सुरक्षा की दौड़ के विपरीत परमेश्वर एक पूरी तरह से अलग और अप्रत्याशित समाधान प्रस्तुत करता है। परमेश्वर कहता है, शांति और भरोसे में ही तुम्हारी ताकत होगी। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है?
वे कहते हैं, नहीं, हमें भागने के लिए तेज घोड़े चाहिए।
बिल्कुल,
तेज घोड़े।
उस जमाने के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये तेज घोड़े आज के समय के सबसे एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर या कहें कि स्टील फाइटर जेट्स की तरह थे। वे सोच रहे थे कि तकनीक और तेजी उन्हें बचा लेगी।
हाँ, वे अपनी समस्याओं से बस भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का जवाब बहुत ही तार्किक और सीधा था कि अगर तुम भागने के लिए तेज घोड़ों का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे दुश्मन तुमसे भी ज्यादा तेज घोड़ों पर आएंगे।
मतलब हम अपनी समस्याओं या अपने गलत फैसलों के परिणामों से भाग नहीं सकते।
बिल्कुल नहीं। इसके बजाय परमेश्वर की मांग यह थी कि वे उस पर भरोसा करें। स्रोत सामग्री यहाँ यहूदी इतिहास से मूसा का एक बहुत ही गहरा उदाहरण सामने लाती है जो इस भरोसे के अवधारणा को और स्पष्ट करता है।
हाँ, गिनती की किताब या बुक ऑफ नंबर्स के अध्याय 20 की वो घटना। ये कहानी इंसानी कमजोरी और परमेश्वर के काम करने के तरीके का बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, उस घटना में रेगिस्तान में इसराइल के लोगों को प्यास लगी थी और वे हमेशा की तरह शिकायत कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से स्पष्ट रूप से कहा कि वो बस चट्टान से बात करे और पानी निकल आएगा।
लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया, है ना?
नहीं, मूसा जो लोगों की शिकायतों से बहुत हताश और गुस्से में था, उसने निर्देशों का पालन नहीं किया। उसने अपनी छड़ी से चट्टान पर दो बार जोर से प्रहार किया और भीड़ से कहा, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें?
उसने पानी निकालने का श्रेय खुद ले लिया।
बिल्कुल, उसने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं माना। डॉक्टर ओसवाल्ड समझाते हैं कि अक्सर परमेश्वर इसलिए इंतजार करता है ताकि हम अपने सारे संसाधनों, अपनी सारी चतुराई के अंत तक पहुंच जाएं।
लेकिन अगर हम इसे थोड़ा तार्किक रूप से देखें तो परमेश्वर हमें इस तरह दीवार तक क्यों धकेलता है? क्या ये महज ये साबित करने के लिए है कि इंसान कमजोर है?
नहीं, ये साबित करने के लिए नहीं कि इंसान कमजोर है, बल्कि इसलिए ताकि जब समाधान आए तो इंसान अहंकार में ये ना कह सके कि मैंने अपनी बुद्धिमानी से, अपने तेज घोड़ों से ये कर लिया।
अच्छा, तो ताकि हम सारा श्रेय ना ले लें।
हाँ, परमेश्वर लोगों पर दया करने के लिए इंतजार कर रहा होता है, जैसे कोई बहुत समझदार और धैर्यवान माता पिता अपने बच्चे को उसकी गलतियों का परिणाम भुगतने देते हैं ताकि बच्चा असल में जीवन का कोई गहरा सबक सीख सके।
ये बहुत गहरी बात है।
स्रोत कहता है कि मुसीबत की रोटी और दुख के पानी के बीच जब हमारे सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तब एक शांत आवाज आती है, एक गुरु की आवाज जो कहती है यह रास्ता है, इस पर चलो।
उस शांत आवाज को लेकर एक और बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दिमाग में आती है। मतलब एक कुशल घुड़सवार घोड़े को काबू करने के लिए लगातार लगाम नहीं खींचता रहता।
हाँ, उसे उसकी जरूरत नहीं होती।
बिल्कुल, वो बस घोड़े की गर्दन पर हल्की से लगाम रख देता है और एक प्रशिक्षित घोड़ा उस हल्के से स्पर्श, उस फुसफुसाहट को समझकर सही दिशा में मुड़ जाता है। पवित्र आत्मा की वो शांत आवाज भी वैसी ही है।
बहुत सुंदर उदाहरण है ये।
लेकिन आज की हमारी दुनिया की समस्या ये है कि हमारे आसपास इतना शोर है, हमारे अपने विचारों का, मीडिया का, हमारी चिंताओं का, कि हम वो हल्की सी फुसफुसाहट सुन ही नहीं पाते। हम बस तेज घोड़े दौड़ाने में, हर चीज को अपने नियंत्रण में लेने में लगे रहते हैं।
बिल्कुल, और जब तक हम उस शोर को कम नहीं करते हम वो दिशा नहीं सुन सकते। लेकिन जब हम शांत होकर उस आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो अंततः जो परिणाम आता है वो हमारी कल्पना से भी परे होता है।
वो कैसे?
देखिए, स्रोत सामग्री हमें यरूशलेम के इस ऐतिहासिक संकट के चरम की ओर ले जाती है। असीरिया, वो अजेय सेना जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसका पतन किसी इंसान की तलवार या मिस्र के घोड़ों से नहीं होता।
तो फिर कैसे होता है?
परमेश्वर स्वर्ग की सेनाओं के साथ यरूशलेम की रक्षा करता है और इसका वर्णन बहुत ही काव्यात्मक है। जैसे कोई शेर अपने शिकार पर गुर्राता है या कोई पक्षी अपने घोंसले के ऊपर अपने पंख फैलाकर मंडराता है।
और पता है, इस महाविनाश के वर्णन में एक बात बहुत हैरान करने वाली है। मतलब इस युद्ध के अंत यानी असीरिया की हार का वर्णन किसी भयानक नरसंहार या खूनी जंग की तरह नहीं किया गया है। स्रोत के अनुसार ये एक पवित्र उत्सव या होली फेस्टिवल जैसा होगा जहाँ डफली और वीणा बजेंगे।
हाँ बिल्कुल,
एक तरफ दुनिया की सबसे खूंखार सेना का अंत हो रहा है और दूसरी तरफ संगीत बज रहा है। ये विरोधाभास कैसे मुमकिन है?
इस विरोधाभास को समझने के लिए स्रोत सामग्री में दिए गए एक प्राचीन इब्रानी शब्द पकाड को समझना बहुत जरूरी है।
पकाड?
हाँ, पकाड। ये एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं। निरीक्षण करना, न्याय करना, आशीर्वाद देना या नियुक्त करना। डॉक्टर ओसवाल्ट इसकी तुलना एक ऐसे दृश्य से करते हैं जहां किसी सेना का कमांडिंग जनरल व्यक्तिगत रूप से मोर्चे पर स्थिति का मुआयना करने आ रहा हो।
अच्छा।
जब सर्वोच्च अधिकारी खुद मोर्चे पर आ जाता है तो निचले सैनिकों को बस पीछे हटना होता है, उन्हें अब लड़ने की जरूरत नहीं होती। जब पकाड़ होता है, जब परमेश्वर खुद व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने आता है, तो वहां सैनिकों के लिए खौफ, ये युद्ध का तनाव नहीं होता बल्कि एक उत्सव होता है, क्योंकि युद्ध अब उनका नहीं रहा।
ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु है। मतलब अगर हम अपनी हर समस्या को, हर संकट को अपनी खुद की बुद्धि, अपनी जोड़ तोड़ और अपने तेज घोड़ों यानी अपने संसाधनों से सुलझाने की जिद करते रहें, तो क्या हम असल में उस सर्वोच्च अधिकारी को मोर्चे पर आने का मौका ही नहीं दे रहे?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
अगर हम सब कुछ खुद ही ठीक करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो वो चमत्कार, वो व्यक्तिगत हस्तक्षेप, वो पकड़ कभी होगा ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी खुद की हर समस्या को तुरंत सुलझाने लेने की जो लत है वही हमारी सच्ची पूजा या वर्शिप में सबसे बड़ी बाधा हो?
मुझे लगता है ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा निष्कर्ष है। जब हम अपनी योजनाओं को बलपूर्वक लागू करते हैं और हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम उस स्थान को भर देते हैं जहां कोई आश्चर्यजनक या ईश्वरीय कार्य हो सकता था। हम शायद कुछ देर के लिए अस्थाई नियंत्रण तो पा लेते हैं, लेकिन हम उस पवित्र उत्सव से चूक जाते हैं।
हम उस शांति से चूक जाते हैं जो केवल भरोसा करने से आती है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक सूत्र में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे असीरिया की विशाल सेना के वास्तविक डर से यरूशलेम के नेताओं ने घबराहट में छिपकर मिस्र के साथ गठबंधन करने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसे रास्ते पर अपना खजाना लुटाया जो बहुत खतरनाक भी था और अंततः व्यर्थ भी साबित हुआ।
हाँ।
हमने समझा कि कैसे ये जल्दबाजी, ये तेज घोड़ों की चाहत और सच्चाई न सुनने की जो विद्रोही मानसिकता है, वो केवल एक कमजोर दीवार की तरह विनाश की ओर ले जाती है। और इसके बिल्कुल विपरीत समाधान कितना स्पष्ट था कि असली ताकत भागदौड़ या दुनियावी हथियारों में नहीं, बल्कि शांति, इंतजार और भरोसे में है।
और देखिए, ये केवल एक प्राचीन साम्राज्य की कहानी नहीं है, ये मानव स्वभाव का एक स्थायी आईना है। ये हमें दिखाता है कि जब हम अपने दम पर चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे कि हम पूरे चित्र को नहीं देख रहे हैं, तो अक्सर हम स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। असली ज्ञान ये स्वीकार करने में है कि हम कुम्हार नहीं है और हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते।
बिल्कुल सही। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री के अंत में बहुत ही सूक्ष्मता से उठाया गया है और वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।
वो क्या है?
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यहूदी लोगों को हजारों साल पहले ही दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए था। उन पर इतने बड़े आक्रमण हुए, इतने साम्राज्य आए और गए, यहाँ तक कि आधुनिक युग में हॉलोकॉस्ट जैसा सर्वनाश भी हुआ, फिर भी वे बचे रहे, उनका अस्तित्व कायम रहा। क्यों?
क्योंकि वे किसी एक राजनीतिक चाल, किसी एक चतुर रणनीति या किसी एक सैन्य गठबंधन के कारण नहीं बचे। उनका अस्तित्व किसी मानव निर्मित सुरक्षा प्रणाली का परिणाम नहीं था।
बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि भरोसा करने का मतलब ये है कि आज की अभी की जो छोटी सी समस्या है उसका तत्काल समाधान मिल जाए, मतलब हमारे लिए तेज घोड़े अभी इसी वक्त आ जाए।
हाँ, हम हमेशा तुरंत समाधान चाहते हैं।
लेकिन क्या होगा अगर असली भरोसा किसी एक लड़ाई को जीतने या आज के संकट से तुरंत बाहर निकलने में है ही नहीं? क्या होगा अगर असली भरोसा सदियों तक चलने वाली उस विशाल अदृश्य योजना का हिस्सा बनने में है, जिसे केवल तभी देखा जा सकता है जब हम अपने छोटे से नियंत्रण को छोड़कर लड़ना बंद करके सच में इंतजार करना सीख लें।
ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचार करने योग्य सवाल है।
है ना? अगली बार जब जिंदगी की गाड़ी किसी बर्फीले मोड़ पर फिसलने लगे, तो ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारने की उस इंसानी फितरत से पहले शायद हमें उस शांत आवाज को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर खुद मंथन करें और हम मिलेंगे अगली विस्तृत चर्चा में।